ठीक है लेकिन आपकी माया दिखाओ ना प्रभु। बोले अच्छा भाई देख लीजियो, भगवान तो चले गए। भीम ने सोचा तो देर हो गई है, चलो घर के तरफ। देव योग से खिड़की महल की खुली रह गई थी और द्रौपदी युधिष्ठिर की सेवा में उन दिनों में थी। खुली हुई खिड़की से जरा सा झांक लिया तो युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी की पैर चंपी कर रहे। भीम चौंके कि युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी की चरण सेवा, इसको इतना सिर पे चढ़ा दिया, जब मेरी सेवा में आएगी और मेरे को बोलेगी पैर दबाओ तो मैं तो दो पैर पकड़ के जैसे धोबी घाट पे धोबी कपड़ा होगा ऐसे ही मैं खटिया पर उसको कर दूंगा फर्श पर बिल्कुल। तो द्रौपदी को मारने का तो पाप लगेगा लेकिन कुटुम के लिए न जाने क्या परिणाम आए। अब दिल की बात दिल में वो भीम बिचारे दुबले होते गए। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाए, वैद्य बिचारा क्या करे कहां तक दवा खिलाए। मैंने इस चौपाई को अपने ढंग से बनाया है। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाए, संत बिचारा क्या करे कहां तक कथा सुनाए। चिंतित दवा इलाज खुराक ये वो मेथी पाक गुंदर पाक कोई असर करता नहीं, चिंतित आदमी को क्या असर करेगा। आखिर एक दिन कुंता जी ने कृष्ण को कहा कि कन्हैया भीम को न जाने क्या हुआ, जिस दिन रात को गाना गाने गया तब से मेरा भीम जो भी खिलाती हूँ घी ये वो बादाम ये काजू जो भी कुछ भी नहीं। भगवान ने बुलाया साइड में, क्या बात है भाई। तो बोला ऐसा ऐसा द्रौपदी का। बोले अच्छा देखो अभी शाम हो रही है, पूर्व दिशा में जाना एक वट वृक्ष मिलेगा, उस वट वृक्ष में चढ़ जाना रात को और फिर सब देख लेना, फिर सुबह क्या होता है मैं मिल लूंगा तेरे से। भीम तो भीम था, चढ़ गया वट वृक्ष पर। थोड़ी देर हुई न हुई कोई म्युनिसिपैलिटी वाले आए, साफ सफाई हो गई, दरिया बिछ गए, सिंहासन लग गए, लोक आए लोकपाल आए देव आए गंधर्व आए यक्ष आए किन्नर आए ब्रह्मा आए विष्णु आए महेश आए, अपने अपने आसन पर बैठ गए। फिर भी एक ऊंचा आसन खाली, भीम सोचता है हद हो गई, ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी पार्वती सरस्वती ये सब अपने अपने सिंहासन पर बैठ गए, लोकपाल अपने अपने वरुण कुबेर अग्निदेव यम आदि अपने अपने आसनों पर बैठ गए, फिर भी ऊंचा सिंहासन खाली। इतने में द्रौपदी महारानी द्रौपदी की जय हो, द्रौपदी आ रही है। भीम दंग रह गया कि व्हाट इज दिस, ये मैंने मिलाया है अंग्रेजी शब्द, भीम ने नहीं कहा था। जो द्रौपदी सभा में आई तो सारे लोकपाल सारे देवता यक्ष गंधर्व किन्नरों के अगवे और ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती पार्वती सबके सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए। द्रौपदी ने आसन ग्रहण किया, ऊंचे आसन पर द्रौपदी बैठी, सबने अभिवादन किया और द्रौपदी आशीषा का हाथ घुमाती हुई कहती कि सब लोग आ गए पांडव भी आ गए। तो नारद जी खड़े हुए नारायण नारायण नारायण। बोले पांडव में चार भाई आए हैं लेकिन भीम गैर हाजिर है, भीम नहीं आया। नारद जी कहते हैं वो है तो इसी सभा में लेकिन सबसे ऊपर बैठा है। द्रौपदी ने हुक्म किया कि पकड़ो उसको और दो भाले वाले चढ़े पेड़ पर। भीम कूदा कूद एक डाल से दूसरी डाल, अब भीम जब कूदे तो डाल का क्या हाल होगा सोचो जरा, कई डालियों की खबर ले ली। आखिर भीम ने देखा कि यहाँ कूदा कूद में काम नहीं चलेगा, भागो। कूदते कूदते नीचे की डाल पे और भागा, ऐसे भागा ऐसे भागा, पीछे दो भाले वाले आ रहे मामा। सामने से कृष्ण मिला, भीम ठहरो। बोले क्या ठहरे, अरे यार ठहर। बोले नहीं वो पीछे पड़े। अरे तू भीम ठहर तो सही, कौन है पीछे, जरा रुक मैं खड़ा हूँ क्यों डरता है। रुका पीछे देखा तो भाले वाले तो नहीं दिखे। कृष्ण बोलते चलो जरा देखे। बोले क्या देखे, कृष्ण ने हाथ पकड़ा। बोले चल भीम मैं साथ में हूँ। आए तो न वहाँ कोई कारपेट है, न आसन है, न देवी देवताओं की महफिल है, न कुछ मीटिंग है, कुछ भी नहीं। हकीम बोलता है प्रभु ये सब था। बोले कुछ भी नहीं, देखो क्या है। बोले ये कैसे। बोले तू नहीं तो बोला था ना आपकी माया दिखाओ, ये है मेरी माया, जो पहले नहीं था और बाद में नहीं है, बीच में दिखे, उसी को तो माया बोलते हैं। ये सब बीच में ही दिख रहा है। आज से 30 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, बड़े बड़े पुत्र थे, शराबी लोग यहाँ शराब गाड़ते थे और पुलिस वाले आते थे। तो एक बार पुलिस की गाड़ी की पिटाई की छारों ने मैंने ऐसी आंखों से देखा, और दूसरी बार कंजरों ने पुलिस के पीछे पड़े और पुलिस वाले भाग के इधर आए, हमने उनको आश्रम में रखा। उन कंजरों ने बोला कि बाबा जी इनको बाहर निकालो, गालियां दे दे के इनको बाहर निकालो, सारे लुखों को सारा उसका पाड़ा सरकारी पाड़ा। उन कंजरों ने बोला एक तो हफ्ता लेते उनके बाप डीआईजी तक के, और ये हमारे से फिर नोचने आते, इन कुत्तों को भी 25 रुपया महीना देते हैं फिर भी हमारे मतलब फोड़ते हैं। मैंने कहा भाई जो वहाँ प्रसाद खाओ। मैंने कंजरों को भगाया और पुलिस को मैंने थोड़ा, फिर वो तो पुलिस वाले बोले बापू नहीं तो आज तो हमारी खोपड़ी टूटी जाए। ऐसी जगह पर ये आश्रम 26 साल पहले ऐसा होता था, जब अकेली हमारी कुटिया बनी तो हमको सबके साथ मिलजुल के छारों के साथ और कंजरों के साथ और पुलिस के साथ ऐसा वैसा करते करते ये वैंकुट बनाया है। जयराम जी कितना पसीना बहा होगा और कितनी रातियां हम जगे होंगे अल्लाह जानता है, राम चाहे न भी जाने क्योंकि अयोध्या में है राम। तो जय श्री राम। हिमालय छोड़ी हमें जगमा उभा पण चढ़नारा कोई ना मर्या रे। दादरो बनी हमें खिला खादा, निसणी बनी हमें जगमा उभा पण चढ़नारा कोई ना मर्या रे जी। कवि काग की कविता है। अन्न बनी हमें आग्यु मा ओराणा, जन जननी थाळीए पीरसणा पण जमनारा कोई ना मर्या रे जी। फूलड़ा बनी हमें माथड़ा कपाव्या, पानी मा बफाणा रूना पुमड़े पुराणा पण सूंघनारा कोई ना मळ्या रे जी। कवि कहे कवि काग पतितोना कारणे हिमालय छोड़ी अमे जग मा आई वस्या, पण समझनारा कोई ना मळ्या रे जी। सेठ को धन मिलता है तो 5 वर्ष से बमणा का प्लानिंग सोचता है, नेता को कुर्सी मिलती तो चमचों के तरफ निहारता है, लेकिन भारत के संत जिस माँ ने पैर पिलाया, जिस भाई ने उंगली पकड़ कर स्कूल पहुंचाया, जिस बहन ने अपने पेट से बजाकर खिलाया, उस बहन को भाई को परिवार को छोड़कर गिरी गुफाओं में तपस्या साधना करके जो सत्य को पाता है वो संत फिर गांव गांव बांटता है। इसी कारण भारतीय संस्कृति में अभी भी चमक है और दुनिया के लोगों को शांत है। चीन की दीवार मशहूर है दामले जी, कोविड का पेट्रोलियम मशहूर है और अमेरिका के अभागे डॉलर मशहूर है, लेकिन भारत के संत अभी भी दुनिया में मशहूर है। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि ओ। तुकाराम का विट्ठल है, जो एकनाथ का आत्मदेव है पांडुरंग है, जो संत कंवर राम का राम है, वही रामानुजाचार्य का राम, वही वल्लभाचार्य का वल्लभ और वही कबीर का अव्यक्त है, आदि शंकराचार्य का वही अद्वैत ब्रह्म है, नानक का वही अकाल पुरुष है, वही मीरा का कन्हैया है और वही गणपतियों का गजानंद प्रभु है, सौर्य उपासकों का वही सूर्य नारायण है, शक्ति उपासकों का वही गायत्री माँ बना बैठा है, आद्य शक्ति वालों का वही जगदम्बा और काली है, उसके रूप अनेक उसके नाम अनेक, वो अनेकों दिलों में अनेक देवियों में अनेक देवों में एक का एक अखंड ब्रह्म बसा है, हम उसी की शरण जा रहे हैं। ऐसा दृढ़ संकल्प करते शांत होते जाओ। वही नानक का हरि है। जन्म जन्म भटकत फिरो, मिट्यो न मन को त्रास, कह नानक हर हर भज मना, निर्भय पावई वास। हम उस हरि का उच्चारण करके अपने निर्भय नारायण में शांत होंगे। रियो मधुर शांति, चित्त की शांति बड़ा धन है। मनः प्रसाद सौम्यत्वम्। ये आध्यात्मिक प्रसाद है जो इतने लोग इतने घंटे शांति से बैठ पाते। विश्व में किसी देश में इतने लोग चुप बैठे इतनी देर संभव ही नहीं है। ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है, ये भारतीय प्रसाद की विशेषता है, ये हिंदू धर्म की महानता है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। हर 6 सेकंड में एक बलात्कार होता है परदेश में। 20 लाख लड़कियां शादी के पहले ही बलात्कार की शिकार हो जाती है एक वर्ष में। 10 लाख लड़के मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण स्कूल नहीं जाते हैं और भटक रहे हैं। और भी न जाने कितना कितना वहां भीतरी तपन लोगों को तपा रही है। भले बखान करते हैं कि अमेरिका ऐसा फलाना देश ऐसा, लेकिन अभी भी जो शांति और सुखद जीवन है, चोरों के राज्य में भी जो शाहूकारी का जीवन है, वो आध्यात्मिकता की बलियारी है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। निपुरम मधुरम निखिलम मधुरम अखिलम मधुरम मधुराधिपते मधुरम मधुरम उस मधुर परमेश्वर का हम चिंतन करते हुए उसी की शरण जाएंगे। जय हो मारा वालुड़ा। मंसूरी मस्ती को लोग बिचारे क्या जाने, साधक की हस्ती को लोग बिचारे क्या जाने। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मधुर शांति परमेश्वर्य माधुर्य मीरा भाई प्रेम दीवानी। कभी मीरा रोती है, कभी हंसती है, कभी वो बावरी गुनगुनाती है। कृष्ण कहते हैं वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम हसति क्वचित रुदति भीक्षणम उद्गायन्ति विलज्जे नृत्यन्ते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाते। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी लज्जा छोड़कर नृत्य करता है। ऐसा मेरा भक्त त्रिभुवन को पावन करता है। की श्रद्धा, जापक की एकाग्रता, जापक का संयम और देने वाले की ऊंचाई, ये चार बातें होती तो मंत्र का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे डायनामो घूमता है, एनर्जी बनती है, ऐसे मंत्र रखने से आध्यात्मिक ऊर्जा बनती है। अर्थिंग न मिले इस ढंग से मंत्र जपना पड़ना चाहिए। इसलिए युद्ध के मैदान में भी श्री कृष्ण ने कहा, चैला जीन कुशोतरम तत्रेव एकाग्रह मन कृत्वा। खैर कुश और मृग चर्म का जमाना नहीं है तो प्लास्टिक और कंबल का जमाना तो है, ऐसा बिछाकर जप करना चाहिए। पूर्व के तरफ अथवा तो उत्तर के तरफ मुंह करके जप करना चाहिए। जप करने के बाद थोड़ी देर उसी वातावरण में चुपचाप बैठना चाहिए और जप के समय मन इधर उधर जाए तो थोड़ा आंखों को पटपटा दे तो मन की भाग दौड़ में फर्क पड़ेगा। फिर भी मन जाएगा तो लंबे श्वास ले और छोड़े फिर शांत। कभी कभी जप करते करते मनोराज हो जाता है अथवा आलस्य, निद्रा, तंद्रा आदि होता है तो उस वक्त क्या करें, पंजों के बल से थोड़ा जंपिंग करके फिर जप में बैठे, फिर भी मन चाहेगा तो फिर लंबा उच्चारण करें, जैसे जो भी मंत्र है अथवा जो भी भगवान का नाम, लंबा दीर्घ उच्चारण करें। तो पहले जप की जगह पर बैठते वक्त ही आंखें बंद कर बैठ जाए तो ध्यान नहीं लगेगा, पहले तो लंबा जप करते जाए और बीच में उतनी देर गैप, फिर जप उतनी देर गैप, ऐसे करते करते मन शांत हो तो जप में और ज्यादा बरकत आएगी। कभी कभार माला जपने में सुविधा हो तो माला जपते जपते ध्यान करना चाहिए, कभी तो मन में ही जपते जपते ध्यान कर लेना चाहिए। और जब ध्यान पर, ध्यान की पटरी पर गाड़ी चलने लगेगी तो शरीर में कभी हिलन डुलन हो अथवा कोई दृश्य दिखे तो उसको दिखने देना चाहिए, गुजरने देना चाहिए, वैसे का वैसा दिखे या न दिखे ये आग्रह नहीं करना चाहिए। जप के पहले, जप के बाद अथवा जप ध्यान के बीच में जीवन रसायन पुस्तक, छोटी सी किताब है, देखियो दिन में भी साथ में रखे, बार बार उसको पढ़े और उसी विचार की भावना बनाए। कभी बीमारी आ जाए तो भी बीमारी के साथ जुड़े नहीं, ओम ओम हथेलियों को रगड़कर ओम ओम मम हस्ते आरोग्यम शक्ति अस्ति, ओम ओम मम हस्ते आरोग्यम शक्ति अस्ति, ऐसा रगड़ के जहाँ रोग है वहाँ इसका सेव करें, बीमारियाँ ठीक हो सकती है, जैसी श्रद्धा। लेकिन इसको एक नाटक नहीं बनाना है, बिजनेस नहीं बनाना है, कभी कभार इसका उपयोग करना है। जिस किसी को करने लग जाए तो आपको घाटा होगा। कल दो तीन ऐसे मंत्र बता दूंगा जो चित्त में समता है। मैं ऐसे ऐसे मंत्र जानता हूं कि आप दंग रह जाए, लेकिन उन सब से ऊंचे में ऊंचा मंत्र है चित्त की समता, तो उसी पर मैं ज्यादा ध्यान देता हूं और आप लोगों को भी बहुत लाभ होता है। जो लोग मनमानी साधना 12 साल से सेवा पूजा करते हैं उनकी अपेक्षा 12 घंटा शिविर में आने वाला अपने को ज्यादा आध्यात्मिक रस से सराबोर पाता है, ये हजारों का लाखों का अनुभव है। जो 25-50 साल से किसी ढंग से किसी के बताए हुए टूने फूने या मंत्र जंत्र से जब ध्यान करते उससे भी ज्यादा फायदेमंद शिविरार्थियों को हमने देखा है और शिविरार्थियों ने महसूस भी किया है। अब कितने हजार लोग आ गए, सोने की व्यवस्था नहीं हो रही और आयोजक बोलते कि बापू रसोई वाले रसोई बना बना कर थक जाते, अब आप बोलते हो जो आए उसको खिलाओ, लेकिन जो बैठे रह रहे हैं उनको बना के खिलाने में भी रसोई बिचारे और वो रसोई पैसा नहीं लेते, अपनी दुकानें बंद करके आए हैं और भोजन बनाने की सेवा करते रहते, वो सदा ऐसा है, सेवा भाव से होता है। तो इतनी असुविधा होने के बाद भी आपके किसी चेहरे पर कोई फरियाद नहीं दिखती है, उबान नहीं दिखती। अगर उबान और फरियाद होती तो आप भाग जाते, किसने जंजीरें लगाई आपको। फिर भी जंजीरें लगाई मोहब्बत की, और वो साधना के रस ने जंजीरें लगाई। पिछले 2-3 दिन से हमारे चित्त में आ रहा है कि अब शिविरार्थी भर बढ़ रहे हैं, तो कोई ऐसी जगह पसंद किया जाए और ऐसे 1-2 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाकर धर्मशालाएं और रहने की, ये वो 2-4 करोड़ रुपया लगा के, वो तो लग जाएगा, आ जाएगा, लग जाएगा, उसकी चिंता नहीं है। तालियां तो बजाते हैं, लेकिन जो समिति वाले हैं वो भी ध्यान से सुने के समी अपने अपने इलाके में भी कहीं चंदा वंदा केयर जरूरी कोई चंदा करता हो तो उसको रोक दो। अपना उद्देश्य चंदा करना नहीं है। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। तो आश्रम का सिद्धांत यह है कि मांगना नहीं। हमने इस आश्रम के लिए या और किसी आश्रम के लिए हमने कभी मांगा नहीं। हाँ, 1-2 बार हमने बोर्ड पर लिखवाया कि रुपया पैसा प्रसाद वस्तु लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मत लाओ, ऐसा तो कई बार हमने बोर्ड पर लगाया। लेकिन आप तन से मन से धन से आश्रम को सहयोग करो, ऐसा हमने अभी तक कहा नहीं, और जब तक ये शरीर है तब तक भी नहीं कहेंगे। नारायण हरि, नारायण हरि। तो जो समिति वाले हैं, अपने अपने साधक हैं, वो ध्यान रखे कि कहीं किसी समिति में कोई स्वार्थी तत्व, अवांछनीय तत्व घुसकर आश्रम के नाम से या समिति के नाम से चंदा चकोरा करके कोई गुरु भाइयों को या ठगते तो नहीं है। 2 दिन पहले एक रिपोर्ट आया कि बापूजी आपका गुरु भाई आया था और 12,000 रुपया हमने उसको दिया। कोई तुमसे हमारा नारायण भी आके कहे कि बापू को 2,000 की जरूरत है, तो आप समझना कि ये नारायण बापू का बेटा नहीं है, इसलिए मांग रहा है। जयराम जी। या शिवलाल भी आकर मांगे तो आप समझना अभी शिवलाल बापू का शिष्य नहीं है, इसलिए मांग रहा है। तो आप मेरे किसी शिष्य के नाते किसी को दो, या गुरु भाई के नाते दो, या मेरे नाते आपको कोई पटा ले, इस बात में आप सावधान रहना। जयराम जी की। मेरे यहाँ तो लोग कोशिश करते हैं कि सेवा का मौका मिल जाए, ताकते रहते ये चाहिए। हम जितने कपड़े पहनते उससे 100 गुने कपड़े लोग लाके रख देते, हमें वापस देने पड़ते, दूसरों को बांटने पड़ते। हमें जो खाना है उससे 100 गुना खाना तो तैयार मिल जाता है। ये तो आश्रम बन गया, घर छोड़कर जब चले गए थे कोई नहीं था, ईश्वर के भरोसे सब फेंक दिया, तभी भी खूब होता था, तो अभी काया को मांगेगा। तो ये सारी समितियां के लोग, सारे इलाके के लोग एक दूसरे को बता देना कि आजकल आश्रम की ऐसी प्रतिष्ठा हो गई कि आश्रम के नाम से मिट्टी भी कोई बेचता है तो रोकड़ी कर लेता। दिल्ली में सत्संग था, किसी ठग ने थोड़ी 10-50-100-200 की किताबें खरीदी, ऑफिस में जाता कि लो ये किताब बापू की है, लोग सिरा को बेचा कि बापू का सत्संग है लाल किले में, आपको जो देना हो। अब वो 2 रुपए की पुस्तक तो दे दी, वो 2 रुपया थोड़े देगा, लो वही लिखो, 100 रुपया ले जाओ, 50 रुपया ले जाओ, 500। ऐसा कुछ ठग लोग भी चंदा कर लेते हैं। तो आपकी समिति के नाम पर या आश्रम के नाम पर कोई ठगी न कर पाए, इसकी भी सावधानी रखना। नारायण नारायण। वो 12,000 बोल के 12,000 ले गया, आपका गुरु भाई था। मेरा गुरु भाई कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, 2 थे तो वो तो दोनों मर गए, 2 गुरु भाई थे साधु वेश में, वो दोनों मर गए बेचारे। एक मेरे से बड़ा था और दूसरा भी मेरे से 10 महीने बड़ा था, तो दोनों चले गए। चले इसलिए गए कि गुरु के सिद्धांत को ठुकरा दिया, फिर चिंता में और ऐसे वैसे में गए। हे राम जी, ऐसा कौन है कि संत की आज्ञा का उल्लंघन करके और सुखी रह सके और सफल हो जाए। मेरे गुरुजी के आज्ञा का उल्लंघन करके रहा तो एक भी ऐसे हुआ, दूसरे का भी ऐसे हो गया। मैं दोनों की मृत्यु पर नहीं गया। मेरा गुरु भाई तब था कि जब मेरे गुरु की आज्ञा में रहता था। मेरे गुरु की आज्ञा को ठुकरा दिया तो मेरा गुरु भाई कहेगा, सीधी बात है। नहीं तो वो मेरा गुरु भाई ऐसा था कि मेरे को बेच के चने खा जाए, इतना वो सत्संग बढ़िया करता था, वेदांत में इतना ऊंचा बोलता था। एक बार निरंजन तीर्थ जगत गुरु शंकराचार्य को आमंत्रण दिया उन्होंने, मनोहर दास मेरा गुरु है, कि आप अजमेर संत सम्मेलन हो रहा है, अखिल भारतीय वेदांत सम्मेलन, आप पधारे। उसने बोला भाई हमको टाइम नहीं है, लेकिन वो लीलाशाह महाराज का शिष्य है मनोहर दास, वो बहुत बढ़िया सत्संग करते, मैं उनको सुनने के लिए अभी आऊंगा राजस्थान में अजमेर में। मनोहर दास ने कहा मैं वही हूँ। बोले तुम हो, मेरे को बुलाने आया? मैं तो भाई तुम्हारा सत्संग सुनना चाहता था, इतना बढ़िया बोलता था शास्त्र के ढंग से। लेकिन गुरुजी की बात एक दो ठुकरा दी, गुरुजी के दिल से उतर गया, फिर 25 आदमी भी उसकी कथा में नहीं जाते थे। उसका आश्रम चलाने के लिए अहमदाबाद के गुड़ बाजार से उसको चंदा करना पड़ता था, 100 रुपया कोई चंदा दे तो उसके आश्रम में बोर्ड लिखता था मार्बल के पत्थर पर, जेठानंद खांड वाले ने 101 रुपया दिया, फलाने गुड़ वाले ने 51 रुपया दिए, ऐसी उसकी स्थिति हो गई। एक तो ऐसे हो गया मरा, और दूसरा तो गुरुजी चले गए और गुरुजी का ही वेश बनाकर और अपना डिम डिम हाँकने लगा, तो उसी अशांति में मर गया। अब कोई हमारा गुरु भाई साधु वेश में नहीं है, फिर भी कोई साधु बोलता कि मैं आसाराम बापू का गुरु भाई हूँ तो वो ठगने के लिए आपको बोलता है। तो कोई 12,000 में ठगा जाए, कोई 2,000 में ठगा जाए, इससे पहले ही सावधान रहना चाहिए। दया करके धर्म पुण्य करना वो अलग बात है, लेकिन बापू के नाम से तुम ठगे जाओ तो बापू के शिष्य नहीं हो। जयराम जी की, नारायण हरि नारायण। ऐसे दूसरे लोग भी गुरु भाई नहीं तो ऐसे वैसे आश्रम का नाम लेके इधर उधर, तो उसमें आप लोग सावधान रहेंगे। जब ध्यान में आप सावधान रहेंगे, और गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता, जो अपना गुरु मंत्र है वो सुबह है। जिन लोगों को गुरु मंत्र लेना बाकी है और कल लेना चाहते हैं, देख कितने बंदे हैं, हाथ उठाओ। तो तुम्हारे लिए झूठ मूठ में बदनामी करे तो तुम सच्ची बात समाज को फैलाओ। कोई तुम्हारे माता पिता गुरु के लिए कुछ का कुछ भक दे तो तुम भी कुछ जो सच्चाई है उसका प्रचार करो। प्रचार से प्रचार कटता है, लोहे से लोहा कटता है, हीरे से हीरा कटता है, कांटे से कांटा निकलता है। ठीक है कि नहीं? तो बुद्ध भगवान के ऐसे शिष्य थे, बड़े दृढ़ निश्चय। तो बुद्ध की बहुत यश हो गई, तो किसी किसी को बुद्ध ने कभी डांटा होगा, या कोई बुद्ध के नाम पर अपना जो संघ में कुछ गड़बड़ किया है तो बुद्ध ने उनको निकाल दिया समिति में से, संघ में से। तो ऐसे लोग जो बेईमान लोग थे, वो अपना बुद्ध के संघ का फायदा उठाना चाहते थे, बुद्ध अंतर्यामी थे इसलिए उनको निकाल दिया। तो ऐसे जो असंतुष्ट लोग होते हैं, जो कब्जा करना चाहते थे बुद्ध के संघ पर, बुद्ध के आश्रम पर, ऐसे लोगों को बुद्ध ने भगा दिया। तो ऐसे लोगों ने बुद्ध का कुप्रचार शुरू कर दिया। बुद्ध का कुप्रचार ऐसा शुरू किया कि वैश्या को पैसा देते, सावस्त्री नगरी जैसे रतलाम और ये पंचेड़ दूरी है ना, तो पंचेड़ केवल आश्रम थोड़ी, पंचेड़ तो पूरा इलाका है, नामली तो इलाका है। तो जैसे रतलाम और नामली तो कुछ अंतर तो है ना, 15 किलोमीटर 12 जो भी होगा। तो ऐसे सावस्त्री नगरी से दूर एक जेतवन नाम का, जैसे नामली ऐसे जेतवन इलाका था, बुद्ध वहां रहते थे, सावस्त्री नगरी में प्रवचन करते थे। सावस्त्री नगरी के लोग बहुत मानते थे बुद्ध को, तो जो बुद्ध के उस समितियों में या संघ में घुसकर हड़प करना चाहते थे, ऐसे लोगों ने एक षड्यंत्र रचा। एक वैश्या को और उसकी सहेलियों को पैसे देकर जेतवन भेजा। जेतवन वो कहीं भी रहे, रात को तो जेतवन रहे और दिन को सावस्त्री नगरी में आ जाए। तो वे लोग अनजान होकर अलग अलग पूछते, दुकान वाले वो जो लुच्चे लोफर थे, अरे आजकल तो दिखाई नहीं देती, कहाँ गई थी? बोले मैं तो जेतवन गई थी। हाँ, जेतवन कौन है? बोले मैंने वहीं धंधा शुरू किया है, अपना पाप का धंधा वहीं शुरू किया है। बोले किसके पास करती? बोले मैं तो रात भर बुद्ध के पास होती हूँ, मैं और मेरी सहेलियां हम सब बुद्ध को संसारी सुख में रखते हैं तो हमको बहुत पैसे मिलते हैं। रात भर हम बुद्ध के पास होती हैं, बुद्ध हमारा पति बन जाता है, हम उसकी औरतें बन जाती है। अरे देखा, अरे सुनो, अरे सुनो, ऐसे करके बुद्ध का कुप्रचार किया और बुद्ध के जो लल्लू पंजू चेले थे उनकी भी श्रद्धा तोड़ दी। लेकिन पक्के जो शिष्य थे उन्होंने कहा बकने वाले चाहे कुछ भी बके, उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं, लेकिन बुद्ध के दर्शन से हमको शांति मिलती है, बुद्ध के दर्शन से हमको ज्ञान मिलता है, बुद्ध के सानिध्य से हमारे जीवन के पाप ताप और काम विकार कम हुआ है। तो बुद्ध के लिए बके तो बकने दो, लेकिन हम श्रद्धा नहीं तोड़ते। फिर भी कुप्रचार बढ़ता गया और सीधे साधे चले चुप रहे तो जो अच्छे आदमी चुप रहते ना तो बुरे आदमियों का हिम्मत बढ़ जाती। अच्छे आदमी सीधे साधे रहते चुप रहते, चलो भाई शांति करो, जाने दो, मरने दो, जो करेगा वो भरेगा, तो जो भरेगा तब भरेगा। लेकिन अभी बुराई करने वाले की हिम्मत बढ़ जाती तो अच्छे आदमी जब लेट गो कर लेते, दरगुजर कर लेते, तो बुरे आदमियों का हौसला बुलंद हो जाता है। तो धीरे धीरे बुरे आदमियों का प्रचार बढ़ गया। आखिर उन्होंने राजा के मंत्रियों से, राजा से मिलकर एक षड्यंत्र रचा के जांच कराई जाए क्या सत्यता है। राजा ने तारीख तय कर दी कि बुद्ध के जेतवन में, अब जेतवन तो बड़ा इलाका था लेकिन बुद्ध के बगीचे में जांच करो क्या बात है। फलानी तारीख जांच की तारीख हुई, समझो 19 तारीख जांच होने वाली है, तो 18 तारीख रात को उस वैश्या को भेजा उन लोगों ने, और 5 बदमाश भी गए वैश्या को दारू बारू पिला के उसके साथ बुरा व्यवहार करके, वैश्या तो बुरा नहीं मानती थी, वो व्यवहार करके उसको नशे में अपना उसका गला दबा दिया। और मध्य रात्रि को बुद्ध जहाँ रहते थे जेतवन में, बुद्ध के बगीचे में, आम के बगीचे में, उसको खड्डा खोद के वे लोग गाड़ के आ गए। तो अब दूसरे दिन सुबह जांच हुई तो उस वैश्या का लाश बगीचे में से मिला, और देखा कि डॉक्टरी जांच किया तो वैश्या के साथ तो बुरा व्यवहार भी हुआ। तो उन लोगों ने ऐसी अफवाह उड़ाई कि बुद्ध और बुद्ध के चेलों ने मिलकर वैश्या के साथ बुरा व्यवहार किया, और कहीं वैश्या बात खोल न दे इसलिए वैश्या का गला दबा के इसको गाड़ दिया, बुद्ध ने अपना पाप छुपाने के लिए ऐसा किया। ऐसा बुद्ध का कुप्रचार किया कि बुद्ध में दृढ़ श्रद्धा रखने वाले लोग भी दगुमगु हो गए। तो किसी की श्रद्धा तोड़ने का पाप तो लगता है, लेकिन श्रद्धा जोड़ने का पुण्य भी होता है। उस समय तो श्रद्धा तोड़ने का पाप कमाने वाले जीत गए, लेकिन अब कौन से नरक में पड़े होंगे, कौन सी ताप में तपते होंगे हमको पता नहीं, लेकिन अभी भी बुद्ध को तो करोड़ लोग मानते हैं, जानते हैं। ऐसे संत कबीर का यश देखकर कुछ असंतुष्ट लोग थे, संत कबीर के सत्संग में आते, कहीं कहीं गड़बड़ की तो कबीर जी ने डांट दिया, निकाल दिया। तो ऐसे जो निकाले हुए रिजेक्ट पर्सन थे, निकाले जाते हैं ना कहीं गड़बड़ करते, तो जैसे नौकर को निकाल देते दुकान से, ऐसे संघ में से निकाल दिया बुद्ध ने, कबीर ने अपने सत्संगियों में से उनको बर्खास्त कर दिया। तो ऐसे लोग और पंडे लोग मिलकर कबीर जी के लिए क्या आया क्या बोलने लगे। एक दिन कबीर कथा करने बैठे तो आया शराबी, बोले वाह महाराज, मेरी दुकान पे कल तुम आए थे, शराब की बोतल लिया था, आधी तो वहीं पी लिया था और आधी साथ में ले गए थे, पैसे दे दो। कबीर ने देखा अब नहीं देते तो ये कथा बिगड़ेगी, चलो भाई जो करेगा भरेगा, उसको दे दिया। इतने में तो एक कसाई आया, बोले हाथ में आधी बोतल शराब थी और एक शेर मीट लिया था, मीट के पैसे तुमने बोला भेजता हूँ, ताजे बकरे का मीट दिया था तुमको, पैसे तो दो। कबीर ने उसको भी दे दिया। तो कथा सुनने वाले भाग गए, बोले आज तक तो सुनते थे कि कबीर मीट खाते हैं, दारू पीते हैं, लेकिन आज तो सचमुच वो दारू के पैसे लेने आया और कबीर ने दे दिए, मीट के पैसे लेने आया और कबीर जी ने दे दिए। तो ये तो भाई जो सुनते थे वो तो सच्चा दिखा। अरे भाई जो अफवाह उड़ाते धीरे धीरे ऐसा सच्चा लगने भी लगता। इतने में तो एक वैश्या आई, आधे लोग तो पहले धक्के से उठ गए, चौथाई लोग दूसरे धक्के में उठ गए, वो कसाई आया था, बाकी 25% लोग रहे कथा में। इतने में तो वैश्या आई रंगी ढंगी अपना नखरे नाच करते हुए और पास में गद्दी में बैठ गए, क्यों बलमा, रात भर तो मेरे साथ थे बलमा। चलो ना घर, तुमने तो कहा था तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, भूल गए क्या? दो चार घंटे में इस दासी को भूल गए? मैं तो तुम्हारी खास लुगाई हूँ, लोई तो बूढ़ी हो गई, मैं तो तुम्हारी खास हूँ बलमा। तुमने तो कहा था कि तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा। कबीर समझ गए कि वो असंतुष्ट तत्वों की सारी साजिश है, चलो तेरा हाथ पकड़ते हैं, कोई बात नहीं। कबीर ने उसका हाथ पकड़ा तो जो 25% लोग थे ना उसमें से कई भाग गए। लल्लू पंजू दो रहे मर्द, एक का नाम था सलूका, दूसरे का नाम था मलूका। ये दो चले रहे प्रेम दे जाता है, बाकी सब भाग गए। सलूका और मलूका दो रहे। कबीर ने सलूका मलूका को कहा कि भाई अब तुम भी चले जाओ, हम तो ऐसे ही हैं, मीट खाते हैं, दारू पीते हैं और वैसा तो अभी बोल ही रहे अपने मुंह से, हम तो भाई ऐसे ही हैं, तुम जाओ। क्या गजब का ज्ञान है सलूका मलूका का, क्या उन्होंने उत्तर दिया है, हद कर दी उन्होंने बच्चों ने। सलूका मलूका दो शिष्य थे, पक्के ऐसे खड़े निकले। कोई 10% श्रद्धा रखता है, कोई 20%, कोई 5%, कोई 80%। 80 वाला 70 हो जाता है, 60 वाला 30 हो जाता है, 30 वाला 10 हो जाता है, 10 वाला भाग जाता है। लेकिन उनकी तो ऐसी 100 तक श्रद्धा कभी कम नहीं हो गए। मेरू रे डगे पर जना मनड़ा न डगे, मेरू पर्वत डिग जाए तो डिग जाए लेकिन उनकी श्रद्धा न डिगे, ऐसे वीर बहादुर। उन सलूका मलूका ने कहा कि शराबी सत्य बोलता है या झूठ बोलता है, इसमें इस पचड़े में हम नहीं पड़ते। कई लोग शराब नहीं पीते फिर भी हमको उनसे शांति नहीं मिलती, ज्ञान नहीं मिलता। कबीर शराब पीते या नहीं पीते वो तो बकने वाले जाने, लेकिन कबीर हमको तो भगवान की भक्ति का शराब पिलाते, हमें आनंद आता। कबीर जी मांस खाते कि नहीं खाते इस पचड़े में हम नहीं पड़ते हैं, जो लोग जैसा भी बके बकने दो। लेकिन हजारों लोग मांस खाते हैं उनकी तो निंदा नहीं करते, हजारों लोग नहीं खाते उनके पास तो शांति नहीं मिलती, इनके पास तो हम जाते हैं तो हमको गम खाने की शक्ति आ जाती है, काम क्रोध विकारों को खा जाने की शक्ति आ जाती है। अब कबीर जी वो वैसा सत्य बोलती है कि झूठ बोलती है वो तो उसके और उसको बहकाने वाले लोग जाने, लेकिन वैश्या कबीर जी के लिए बोलती है तो बोलने दो। अगर खानदान होती तो सचमुच में भी होता तभी नहीं बोलती, और ये बयान जो हलकट होते हैं तो कुछ का कुछ बोल दे, कुछ का कुछ कर दे, इसमें मेरा क्या जाता है। और हम तो बाबा आपके चरणों में रहेंगे, हमें अपने श्रद्धा से चरणों से आप दूर न कीजिए। कबीर ने उन पर एक कृपा दृष्टि डाली, उनको अंतरात्मा परमात्मा के साक्षात्कार का स्वाद आने लगता। दृढ़ निश्चय से, दृढ़ श्रद्धा। फिर वैशा बोलती बलमा अब विरोधी चारों तरफ पूरे काशी में हाहाकार हो गया, क्या आज तक जो सुन रहे थे अफवाहें वो सच्ची निकली, आखिर सत्य की जय होती। और दुष्ट लोग सत्य की जय होने की दुहाइयां भी ज्यादा देते हैं, सत्य की जय होती है। अब सत्य की जय हुई कि तुम्हारे धतिंग की जय हुई, सत्य की जय होती है। आज तक हम बोल रहे थे कि कबीर दारू पीते कोई नहीं मानता था, कबीर मांस खाते कोई नहीं मानता था, कबीर वैश्या के पास जाते कोई नहीं मानता, आज देखो फटी आंखें देखो। ओ काशी की सड़कों पे भीड़ खड़ी हो गई। कबीर ने उस वैश्या का हाथ पकड़ा, तू बोलती कि मेरा हाथ मत छोड़ना, चल तेरा हाथ पकड़ लेता हूँ। हाथ में एक बोतल मंगाई ब्रांडी की कबीर जी ने, बोतल तो खाली थी उसमें गंगा जल डाल दिया था। अब ब्रांडी की बोतल लगे, एक हाथ में बोतल दूसरा हाथ वैश्या के हाथ में, और कबीर जी हाथ उठा के बोतल वाला कहते सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरों बिगड़ गयो रे, दही संग दूध बिगड़ो, मक्खन रूप भयो रे, कबीरो बिगड़ गयो रे। कौन कह रहे? कबीर जी खुद कह रहे। अंदर से कितने निर्भीक हैं, कितने आत्ममस्त हैं। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मितवा, कबीरो बिगड़ गयो रे। पारस संग भाई लोहा बिगुर्यो, पारस संग भाई लोहा बिगुर्यो, कंचन रूप भयो रे कबीरो बिगर गयो रे। सुनो मेरे भाइयो, सुनो मेरे मित्रवा, कबीरो बिगर गयो रे। जो श्रद्धालु थे बीस बीस आंसू रो रहे हैं, जो और समझदार थे बोले संसार तो बकता आया है महापुरुषों के लिए, भगवान के लिए, भगवान के गुरु के लिए भी बोलते थे। वशिष्ठ जी बोलते, हे राम जी, मैं बाजार से गुजरता हूँ तो मूर्ख लोग मेरे लिए क्या क्या अफवाह उड़ाते मुझे सब पता है। जब रामचंद्र जी के गुरु रामचंद्र जी जिसके चरण धोकर चरणामृत ले रहे, सीता जी जिनका चरणामृत अपने ललाट पर लगाकर अपने को धन्य धन्य करे, ऐसे गुरु वशिष्ठ के लिए भी लोग बोलते थे कि बूढ़े की बुद्धि खराब हो गई। वरसभा में बोलता कि राम सीता मुझे दे दे, और सीता जी को ले लिया, फिर आ सीता वापस दिया, आठ गुना सोना तोल कर लिया वशिष्ठ जी ने। अब बात तो सच्ची है, लेकिन वशिष्ठ ने ऐसा क्यों किया वो तो वशिष्ठ जाने और राम जी जाने। मूर्ख लोग तो कुछ का कुछ बकते। तो हे राम जी, मैं बाजार से गुजरता हूँ तो मूर्ख लोग मेरे लिए क्या क्या बकते। अब सीता माता इतनी पवित्रता की मूर्ति थी, जगदम्बा स्वरूप थी, ऐसे सीता माता को भी धोबी ने तो कलंक लगाया। बकने वाले तो दुनिया में बकते रहते हैं। कुछ शिष्य ऐसा सोचे, कुछ सोचे, कुछ है सब तो इतना हो रहा है, जरूर दाल में काला होगा, तेरी खोपड़ी में काला है बेवकूफ, कहीं का कबीर में दोष देखता। कबीर जी उस वैश्या का हाथ पकड़ के बाजार में गुजर रहे। विरोधियों ने जाके काशी नरेश को बोला कि राजा, तुम जिस संत को मानते थे वहां मत्था टेकते थे, लो ऐसा है। कबीर ने अपनी गलती मान लिया, वैश्या को हाथ में लेके, वैश्या का हाथ काशी की सड़कों पे घूम रहा है माफी मांगने के लिए। हालांकि वो माफी मांगने के लिए नहीं घूम रहे थे, लेकिन विरोधी तो कुछ का कुछ बना बना के मसला बोलेंगे ना। काशी नरेश ने कबीर को आदमी भेजे, कबीर उस वैश्या सहित राज दरबार में खड़ा हो गया। काशी नरेश बोलता है, महाराज मैं आपकी इज्जत करता हूँ, लेकिन आप अपनी इज्जत का ख्याल रखो, इस छिनाल को साथ में क्यों लेकर घूम रहे हो, मैं अभी भी तुमको माफ कर सकता हूँ। कबीर बोलता, माफ, मुझे तेरी माफी की जरूरत नहीं, तेरे से जो बनता है सब कर ले, तू क्या कर सकता है। माता के गर्भ का जेल भोग लिया जीव ने, 84 लाख का जेल भोग दिया, तो ये तेरे जेल में बैठने में हमारा क्या बिगड़ता है। जेल के कैद का भय तो उन्हीं को होता है जो कैदी है, और जो राम रस में झूमे वो जहां भी जाएंगे कैद में भी वैंकुट बना देंगे। बोले, महाराज छोड़ो जाना, आप जैसे संत को कैद में तो नहीं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप ठीक नहीं कर रहे, आप अभी भी अपनी चाल चलत सुधार लो तो मैं माफ कर सकता हूँ। बोलो, काशी नरेश की भी बुद्धि कुप्रचार के रंग से रंग गई। बोलते, चाल चलत सुधारो, कबीर को बोलते सुधारो, और दिन भर गांव में क्या क्या होता है उनको तो नहीं कहते। कबीर ने कहा, हम तो सुधरने वाले नहीं, हम तो बिगड़ गए। इतने में कबीर ने अपने शराब की बोतल जो थी ना, वो पानी भरा था, उसके एकदम लौ की धार किया, ढोला धरती पे। काशी नरेश ने कहा कि महाराज ये क्या करते हो, यहाँ क्यों डोलते हो शराब। शराब था नहीं, पानी था, गंगा जल था। बोले, जगन्नाथपुरी में रसोया भगवान का भोजन बना रहा था, तो उसकी खमीज को आग लग गई, वो जलने को तैयार, जल जाता, इसीलिए मैंने यहाँ पानी ढोला, उसको बुझा दिया। काशी नरेश दंग रह गया कि भाई संतों की बात संत ही जाने। इस समय बीतने के बाद जिन विरोधियों ने असंतुष्टों ने षड्यंत्र किया, थोड़ी देर के लिए सफल हुआ, बाद में तो वे ऐसी मुंह की खा के चुप होकर नरकों में मरते रहे, सड़ते रहे, पता नहीं। लेकिन कबीर को तो अभी भी करोड़ों लोग मानते हैं, कबीर को तो करोड़ों लोग अभी भी जानते हैं। इल्जाम लगाने वालों ने इल्जाम लगाए लाख, मगर तेरी सौगात समझकर हम सिर पे उठाए जाते हैं। सुनो मेरे भाइयों, सुनो मेरे मित्रवा, कबीरो बिगड़ गए। अरे तुकाराम महाराज जिनको प्रणाम करके छत्रपति शिवाजी महाराज अपने को भाग्यशाली मानते थे, ऐसे तुकाराम महाराज को शिवोबा कासर लुफंगों का अगवान और लुफंगों ने मिलकर तुकाराम महाराज की इतनी बुराई की कि लोगों में तुकाराम जी के लिए नफरत पैदा हो गई। जो लोग तुकाराम के दर्शन के लिए लालायित होते थे वे तुकाराम को गालियां देने लगे। एक बार तो तुकाराम कहीं से अकेले गुजर रहे थे तो बदमाश लोगों ने तुकाराम की निंदा सुनी थी तो बोले ऐसे महाराज को तो सबक देना चाहिए। तो तुकाराम महाराज को बुलाकर उन्होंने क्या करा, नाई से मुंडन करा दिया। बाद में तुकाराम महाराज को गधे पे बिठाया, गधे पे भी उल्टे मुंह गधे पे बिठाया, पूंछ के तरफ मुंह करके, और सिर पर हल्दी और चूना मल दिया। फिर भी उन असंतुष्टों को संतोष नहीं हो रहा था। पांच शेर बैंगन और गाजर मंगाकर उनको हार पहरा दिया ये मजाक उड़ाने के, और पूरे लोह गांव में तुकाराम महाराज का सरगस निकाला। वो घूमते घूमते होय होय करते छोकरे उनका सरगस निकालते। जब तुकाराम महाराज का घर आया, जीजाई ने देखा कि मेरा पति का ये इतना अपमान कर रहे हैं। हालांकि वो भाई भी बड़ी लुच्ची थी, तुकाराम को गालियां देती थी। एक बार तो डंडा मार दे तो डंडे के दो टुकड़े कर दिए, ऐसी औरत थी। उसका भी मन पिघल गया और उसने उठाया धोखा के मुंह नालायक छोरे मेरे पति देव को ऐसा सता था। तुकाराम ने कहा छोड़ो छोड़ो उनको नहीं गाली दो। वो सब छोरे भाग गए। तुकाराम महाराज गधे से उतरे, पत्नी रो रही है। तुकाराम बोलते क्यों रोती, ये तो विट्ठल की मर्जी भगवान की मर्जी, इतने दिन हो गए थे पैसे नहीं थे बाल कटाने के, उन्होंने अपने पैसों से हमारे बाल कटा दिए। दुखी होना या सुखी होना अपने हाथ की बात है, अन्याय करना या न्याय करना तो उनके हाथ की बात है। अन्याय करेगा तो उनको अन्याय मिलेगा, न्याय करेगा तो उनको न्याय मिलेगा, लेकिन हम दुखी क्यों रहे। दूसरी बात, बेचारों ने हल्दी और चूना लगा दिया, कहीं फूड़ी फूसी होगी तो वो भी मिट जाएगी। और लोग गांव में इतने वर्षों से रहते, पूरा गांव देखा नहीं था बेचारों ने, खुद तो पैदल चले, मेरे को गधे पे बिठाया और सारी गली गलियां घुमाई। और जहां से मेरा शोभा यात्रा जाता था, जीजाई तेरे साथ शादी किया ना, उतनी बारात उतने लोग नहीं थे बारात में जितने अभी बारात में थे लोग, सब देख रहे। तो रोने लग गई जीजाई, देख दाल खा खा के थक गया अपन, अब बुढ़ापे में 45 साल की उम्र के बाद तो दाल ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए, जठरा कमजोर हो जाती है, दाल रोटी दाल सब्जी दाल भात, ये 45 साल के बाद दाल खाना बंद करना चाहिए। लेकिन अपन तो गरीब हैं, तो सब्जी के पैसे नहीं थे। उन बिचारों ने पांच सेर बैंगन और गाजर का हार पहरा है, पांच दिन की सब्जी भी दे दिया, कसा चंगड़ा है। जुल्म करने वाले तो जुल्म कर रहे तुकाराम से, लेकिन तुकाराम अपने आप से जुल्म नहीं करते, और जीजाई भी अपने अपने दिल में दुख न लाए। महापुरुषों का ज्ञान तो गजब होता है, लेकिन महापुरुषों का आनंद भी गजब होता है, धैर्य और समझ भी गजब की होती है, तो मस्ती भी गजब की होती है। उनकी मस्ती में कोई कमी नहीं ला सकता, ये हद हो गई। उनके आनंद में कोई कटौती नहीं कर सकता, क्योंकि उनका आनंद बाहर की वाहवाही या निंदा से कोई प्रभावित नहीं होता, उनका आनंद आत्मा परमात्मा से जुड़ा हुआ है। हाँ, कभी कभार राम भी बोलेंगे हाय लक्ष्मण हाय सीता, लेकिन वो हाय सीता लवर की नहीं, दुखी होकर नहीं बोल रहे, मर्यादा स्थापने के लिए कभी बोलते हैं। साधु संतों को तो सहन करना चाहिए, नहीं नहीं ये कोई जरूरी नहीं है, गर्जना भी करते। किसी संत ने उपदेश दिया कि क्रोध नहीं करना चाहिए, और उस पर बड़ा सत्संग किया, और बड़े ऊंचे कोटि के संत, खबरदार डर गए मर गए, बोले क्या हो गया, बोले चुकने हो गए। क्रोध नहीं करना चाहिए और ऐसा डांटा एक आदमी को। फिर कुछ शिष्य दो घड़ी दो मिनट के बाद शिष्यों ने देखा कि महापुरुष के चेहरे पे तो कोई क्रोध की आग नहीं, अशांति नहीं, आंखों में वो नहीं है। तो धीरे से बोला कि प्रभु जी आपके प्रवचन से तो हमने सुना, क्षमा करना, हाथ जोड़ के प्रार्थना,
चलो दोबारा नहीं संत ने का पूछ ले। बोले महाराज जी डर लगता है। बोले क्यों बेटा? पूछ ले। अभयदान जा निर्भय अभयदान। बोले महाराज जी अभी आपने सत्संग किया था उसमें बताया था कि क्रोध नहीं करना चाहिए और आधा घंटा क्रोध करने से 7 ounce खून पॉइजन हो जाता है और गुरु महाराज आपने फलाने आदमी को ऐसा डांटा कि अभी भी हम डर है। आपने इतना क्रोध करके अपना खून गुरु जी ऐसे तो गुरु जी खिलखिला के हंसे के चेला जी अभी तो समझा ही नहीं। क्रोध एक बात है और गर्जना दूसरी बात है। हम क्रोध की आग में नहीं जले थे, हमने तो अनुशासन के लिए गर्जना किया था। देख कथा सुन, भागवत में आता है कि एक जगह से देवऋषि नारद जी जा रहे थे। रास्ते में एक बड़ा लंबा काला नाग, नारद जी ने उसको अपनी शक्ति दी। पूछा क्या चाहिए? बोले आप तो शक्तिदाता हैं, आप तो संत हैं, आप अगर प्रसन्न हैं तो मुझे इतना उपदेश दीजिए कि मेरा मुक्ति हो जाए, दोबारा मेरे को ऐसी योनियों में नहीं आना पड़े। नारद ने कहा अगर मुक्ति चाहता है तो किसी को काटना मत, कर्म बंधन बनाना मत। मनुष्य जन्म में वैरी स्वभाव था तो अभी देख ऐसे हो गया, शराबी कबाबी और वैरी था तो किसी को काटना मत। सांप ने वो बात मान ली। साल भर के बाद नारद जी वहां से गुजरे, देखा तो सांप के दांत टूटे हुए, मुंह बौखला गया, ऐसे शरीर ऐसे ही भूखा काका, शरीर बिल्कुल कमजोर, चलने में भी उसको मुसीबत, बेचारे को जीना उसके लिए भारी पड़ गया। नारद जी ने पूछा नागराज ऐसा हाल क्यों हुआ तुम्हारा? नागराज बोलता कि महाराज ये तुम्हारा उपदेश सुनियो ने कि तुमने कहा किसी को काटियो मत और तुम्हें काटिया मत, ऐसा उपदेश मैंने पक्का किया, फिर तो गाय चराने वाले छोरे मेरा पकड़े तो उनको काटा नहीं, मेरी पूंछ पकड़ के डोरी की नाई उछा ले, कभी मेरा मुंडा पकड़ ले। आपने कहा था कि काटना नहीं तो मैं नहीं काटता हूँ तो सब मेरे पर हावी हो गए, तो अब तो मैं बहुत डरता हूँ, खाने को भी इधर उधर जाता हूँ तो डर लगता है कि कोई पकड़ नहीं, मुंह पकड़े नहीं, कोई पकड़ के फेंके नहीं, उछाले नहीं,